बारह उद्धव ब्रज कौ गमन करौ भ्रमर गीत के बहाने सूर के रचना संसार की एक और यात्रा। सूरदास संबंधी अपने पिछले निबंध में हमने सूर के काव्यत्व, उनकी रचना दृष्टि तथा उसके प्रयोजनों की संक्षिप्त चर्चा करते हुए मुख्यतः सूर काव्य के उन सामाजिक आशयों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जिन पर प्रायः विद्वानों की दृष्टि नहीं गई है। इस निबंध में हमारा एक अन्य उद्देश्य सूर काव्य की वर्तमान संदर्भता तथा उसकी प्रगतिशील भूमिका की उपस्थापना भी रहा है। इस क्रम में हमने वात्सल्य, संयोग, वियोग, श्रृंगार तथा भ्रमर गीत के प्रसंग के कुछ नए पहलू उद्घाटित करने का प्रयास भी किए हैं। प्रस्तुत निबंध में हम इनसे संबंधित चर्चा को कुछ विस्तार देना चाहेंगे और चाहेंगे कि इस क्रम में सूर की कविता से हम और भी अंतरंग साक्षात्कार करते हुए उसके महत्व को जाने और परखें। सूरदास जैसे रसिद्ध कवि के विषय में वस्तुतः जितनी भी चर्चा की जाए वह कम होगी। उसे जितनी अंतरंगता से देखा परखा जाए उसके नए नए पहलू सामने आते रहेंगे। हमने यहाँ भ्रमर गीत प्रसंग को जानबूझकर मुख्यता दी है, इस कारण कि उसके बहाने सूर काव्य के वात्सल्य तथा संयोग श्रृंगार संबंधी पदों को छोड़ते हुए भी ऐसे अनेक बिंदुओं का निकट साक्षात्कार हम कर सकेंगे जो सूर की रचना दृष्टि और रचना सामर्थ्य को बड़ी खूबी के साथ सामने लाते हैं और जिनका संबंध उन पक्षों से भी बनता है जो इस चर्चा में शामिल नहीं है। आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल ने सूर के काव्य की चर्चा करते हुए उनकी सहृदयता और भावुकता के साथ उनकी चतुरता और वाग विदग्धता को विशेष रूप से रेखांकित किया है। भावुक, सहृदय, चतुर और वाग विदग्ध तो सूर अपने समूचे काव्य में है, वात्सल्य के प्रसंगों में भी और संयोग श्रृंगार के प्रसंगों में भी, किंतु उनकी ये विशेषताएं बहुत सघन बनकर उनके भ्रमर गीत में उद्घाटित हुई हैं। अपनी सांप्रतिक चर्चा में हम सूर की इन विशेषताओं को उभारना चाहेंगे ताकि उनके काव्य और उनकी उसकी मनोभूम से हमारा परिचय और भी अंतरंग हो सके। भ्रमर गीत प्रसंग की एक अन्य संदर्भ में भी विशेष चर्चा हुई है और वह है निर्गुण सगुण का प्रसंग। अपने पिछले निबंध में हमने इस प्रसंग को संक्षेप में उठाया है और कहा है कि सूर के यहाँ सवाल निर्गुण सगुण का उतना नहीं है जितना योग बनाम भक्ति और ज्ञान बनाम प्रेम का। गोपियाँ जो भोली भाली ग्रामीणाएं हैं, सगुण निर्गुण प्रपंच में क्यों पड़ेंगी? जिस कृष्ण के पीछे सगुण साकार कृष्ण के पीछे वे दीवानी हैं, वह उनके लिए किस निर्गुण से कम है? अपनी वर्तमान चर्चा में हम इस प्रश्न पर विस्तृत चर्चा करना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे कि सूर के काव्य में ही नहीं समूचे भक्ति काव्य में निर्गुण सगुण प्रपंच उतना नहीं है जितना इस बात पर बल है कि भक्ति और प्रेम से बढ़कर दूसरी कोई चीज नहीं है। निर्गुण संतों तक में जिनके यहाँ सगुण की चर्चा ही नहीं है, निर्गुण ही निर्गुण है, वहाँ भी मुख्य बल प्रेम तत्व पर और भक्ति पर ही है, योग और ज्ञान पर उतना नहीं, बावजूद इसके कि हिंदी में कबीर जैसे निर्गुण संतों को ज्ञान मार्गी कहा गया है। सूर काव्य की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता को भी अपने प्रस्तुत निबंध में हम जोर देकर सामने लाना चाहेंगे और वह है सूर काव्य की वह अंतर्वस्तु जो सगुण साकार कृष्ण की लीलाओं से ओतप्रोत होते हुए भी कहीं भी संकुचित नहीं है, वरन लीला परख होने के नाते इतनी प्रशस्त बन सकी है कि हिंदू मुसलमान सबके लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। कहना न होगा कि रसखान, रहीम और नजीर अकबर आबादी जैसे मध्यकालीन मुसलमान हृदय सहृदय ही नहीं, आधुनिक युग में भी कृष्ण का यह लीला गायन हिंदू मुसलमान सबको अपनी परिधि में खींचता रहा है। शास्त्र और वेद की अवमानना न करते हुए भी सूर अपनी सर्जना में, अपनी रचना दृष्टि में इतने सेक्युलर, उदार और मानवीय बने रह सके हैं कि तमाम सारे धार्मिक, सामाजिक, परंपरागत आदर्श और व्यवहार, मान्यताएं और रीति रिवाज, शास्त्र और वेद की बातें उनके रचना संसार में कहीं गहरे विद्यमान हो तो हो, सूरदास अपने लीला गायन को वर्ग, वर्ण, नस्ल, जाति, धर्म और संप्रदाय के घेरे से बाहर निकालकर मनुष्यता के प्रशस्त धरातल पर लाने में सफल हुए हैं। आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी की अपेक्षा सूर की कविता को इस नाते अधिक सांप्रदायिक, वल्लभ संप्रदाय तथा पुष्टि मार्ग से उसके सीधे जुड़ाव के नाते कहा है कि जहाँ तुलसीदास भक्ति के किसी संप्रदाय से सीधे नहीं जुड़े और बहुदेव उपासना की जमीन पर रहे। वहाँ सूरदास न केवल बल्लभ संप्रदाय और पुष्टि मार्ग से जुड़े, उसमें दीक्षा ली, वरन उसी के चलते कृष्ण के अलावा अन्य देवी देवों की उपासना से भी अलग रहे। आचार्य शुक्ल की इस मान्यता को ध्यान में रखते हुए सबसे अंत में हमारी चर्चा का मुख्य मुद्दा यह होगा कि क्यों कर बल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग या शाप से सीधे संबद्ध होते हुए भी सूरदास इस नाते सांप्रदायिक और सीमित नहीं हो पाए कि इस संप्रदाय या मार्ग की विचारधारा तथा शिक्षा को वे अपनी सृजनात्मकता में इतना रचा पचा सके कि वह प्रायः उनकी रचना में उभर कर सतह पर नहीं आने पाई। इसी नाते सूर की कविता कविता धर्म के निकट बनी रही, धर्म की कविता के रूप में सामने नहीं आ सकी। धर्म की कविता के रूप में भी उसका इस्तेमाल हुआ हो या हो रहा हो, किंतु जैसा हम कह चुके हैं उसका आस्वाद उन्होंने भी किया और वे भी उससे जुड़े जो दूसरे धर्मों के थे या कतई धार्मिक नहीं थे। सूर की कविता बुनियादी धार्मिक बुनियाद पर रची जाकर भी सही मायने में इस नाते प्रामाणिक कविता बन सकी कि उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध अपनी सारी मानवीयता और पैनेपन के साथ मूर्त हो सका, उसका भाव जगत अपनी समूची गहराई के साथ उद्घाटित हो सका, और जहाँ तक विचार या विचारधारा का सवाल है, यह उनके रचना संसार में मौजूद रहते हुए भी उसकी भाव सत्ता या सौंदर्य सत्ता को दबोच नहीं सकी। अपनी वर्तमान चर्चा का प्रारंभ हम भ्रमर गीत के प्रसंग से करना चाहेंगे और प्रयास करेंगे कि उसी के माध्यम से हम भाव सहृदय वाग विदग्ध और चतुर सूर के अंतर्वर्ती रचनाकार से साक्षात्कार करें, उसके उस रचना कौशल से परिचित हों जिसने मुक्तक कही जाने वाली एक रचना को प्रबंधात्मक दीप्ति प्रदान की है। भ्रमर गीत प्रसंग के पहले सूर सागर में वियोग श्रृंगार की मार्मिक पेशकश है। कंस के आमंत्रण पर अक्रूर के साथ कृष्ण गोकुल से मथुरा जा चुके हैं। लौटने की अवधि तक ब्रजवासी कृष्ण की प्रतीक्षा करते हैं, किंतु जब अवधि बीत जाने पर भी कृष्ण नहीं लौटते तो शुरू होता है विरह का वह सिलसिला जिसका कोई और छोर नहीं दिखाई पड़ता और जिसके नाते ही सूर सागर वियोग श्रृंगार की त्रासद व्यथा कथा का दर्जा पा सका है। जिन गोकुलवासियों के मन में कृष्ण से विरहित होकर गोकुल में रहने और जीने की कल्पना भी न आई थी, कृष्ण का वियोग उन्हें भीतर तक आहत और स्तब्ध कर देता है। वे हत चेतन हो उठते हैं। गोप गोपियां नंद यशोदा ही नहीं, गोकुल के प्राणी मात्र, यहाँ तक कि वनस्पतियां भी वियोग की इस पारावार में संज्ञा शून्य हो उठती हैं। वस्तुतः सूर्य यहाँ यह दिखाना चाहते हैं कि गोकुलवासियों के लिए, वहाँ के चर अचर के लिए कृष्ण के वहाँ होने के क्या मायने थे। कृष्ण किस प्रकार वहाँ की धरती, वहाँ के लोगों, वहाँ की प्रकृति और वहाँ के कण कण से एकात्म थे। उसी नाते उनके बिना गोकुल में सब दुखी हैं, सब संतप्त हैं। सूर ने वियोग श्रृंगार के इस प्रसंग में गोपियों की मनोभूम और उनके शारीरिक अवस्था का जो चित्रण किया है, जिस प्रकार उन्होंने ब्रज के कण कण को कृष्ण की याद में विलखता दिखाया है, यह सब उनके सहृदयता तथा भावुकता का वही प्रतिफल है। बिना सहृदय और बिना भावुक हुए सूरदास गोपियों की मनोभूम में इतने अधिकार के साथ प्रवेश ही नहीं कर सकते थे जितने अधिकार के साथ उसके भीतर प्रवेश करते हुए उन्होंने उसे थाहा, परखा और प्रस्तुत किया। अब हम निपटहिं भई अनाथ, जैसे मध तोरे की माखी त्यों हम बिन ब्रजनाथ। अब वह बातें उलट गई, जिन बातन लागत सुख आली तेऊ दूसर भई। सखी इन नयनन तय घनहारे, हमको सपने हूँ में सोच, हमको जागत रैन बिहानी, आदि आदि ढेरों पद हैं जिनमें सूर ने गोपियों की मनोव्यथा को पूरी सजीवता के साथ उद्घाटित किया है। गोपियों के अलावा यशोदा की मनोव्यथा की गहराई में भी सूर निर्बाध गए हैं और पुत्र के विरह में दुखी माता के साथ अपनी पूरी संवेदनागत उष्मा के साथ विद्यमान है। जसुदा बार बार यो भाक है कोई ब्रज में ही तू हमारो चलत गोपाल ही राख है। जसुमत अति ही भई बिहाल, सुफलक सुत यही तुम्हें बूझियत हमारे हरत हमारे बाल। ए दो भैया जीवन हमारे कहत रोहिणी रोई, धरनी धरनी गिरत उठत अति आकुल कही राखत नहीं कोई। यह सुनी गिरी धरन झुकी माता, कहा अक्रूर ठगौरी लाई लिए जात दो भ्राता। बिरध समय की हरत लकुटिया पाप पुण्य डर नाही कछु नफा है तुमको या मैं सोचो धौ मन माही। यद्यपि मन समझावत लोक सूल होत नवनीत देख मेरे मोहन के मुख जोग प्रात काल उठ माखन रोटी को बिन मांगे दे है को मेरे वा कान कुंवर को छिन छुन अंकम ले है कहियो पथिक जाहु घर आवाहु राम कृष्ण दो भैया सूर श्याम कत होत दुखारी जिनके मोसी मैया। समूचे पदों में यहाँ से वहाँ तक सूरदास की सहृदयता तथा उनके भाव प्रवण मन की गहरी छाप देख पड़ती है। आश्चर्य होता है कि सूर जैसे विरागी गायक जिनके घर परिवार तथा जीवन वृत्त के बारे में अत्यंत अल्प सूचनाएं हैं, मानव हृदय में इतनी गहराई तक पहुँच सकने और उसे था सकने की क्षमता और दृष्टि कहाँ से पा सके है। गोपियों की व्यथा हो या गोप सखाओं की, नंद की व्यथा हो अथवा माता यशोदा की, सूर सबके हृदयों की थाह ले सके हैं। कृष्ण के योग में दुखी और संतप्त गाय बछड़ों तथा ब्रज की प्रकृति को भी संवेदना की समान उष्मा के साथ प्रस्तुत कर सके हैं। इस बिंदु पर आचार्य नंद द्वारे वाजपेयी ने एक अच्छा सवाल उठाया है। भगवत की कथा के अनुसार कंस को मारकर कृष्ण महाराज तो बन गए, मथुरा में उनके जीवन को एक नई दिशा मिली, वह बदल गया, किंतु जिन्हें वे गोकुल में छोड़ आए थे उनका अपना जीवन कृष्ण के जीवन के साथ कैसे बदल जाता, वह तो उसी गति से चल रहा था। समस्या यह थी कि कृष्ण क्या उपाय करें जिससे उधर के उनके लोकोत्तर चरित्र का भी विकास हो और इधर ब्रजवासियों का भी समाधान हो। मधुर भाव से कृष्ण की उपासना करने वाले कवियों और गायकों के सामने भी यह समस्या उपस्थित थी और सूर के सामने भी कि आगे कृष्ण काव्य की कौन सी दिशा बदली जाए। संयोग की लीलाओं की हद हो चुकी थी। मान लिया जाए कि कृष्ण ब्रजभूमि में लौट आते, मथुरा में नहीं रुकते, तो फिर संयोग की ये लीलाएं फिर प्रारंभ होती, लेकिन कब तक चलती? काव्य तब एकदम एकरस और उबाऊ हो जाता। ऐसी स्थिति में उनका ब्रज लौटना अच्छा था, एक रास्ता को बनाए रखना अच्छा था, या न लौटने की स्थिति में समूची कृष्ण कथा को एक नया मोड़ देना अच्छा था, ताकि विरह का, संयोग के बाद अवसाद और व्यथा का एक नया अध्याय खुले, कथा में और भी मार्मिकता आए। सवाल एक और भी था, कृष्ण के सामने की इस स्थिति में भी ब्रज के वे लोग जिन्हें वे इतने प्रिय थे निराधार न रह जाए, उनकी अवमानना न हो। इसी समस्या के समाधान हेतु उद्धव का प्रसंग सामने आया, जिन्हें अपने ज्ञान का अभिमान था। उन्होंने उद्धव को ब्रज भेजा ताकि उद्धव अपने ब्रह्म ज्ञान से ब्रज के संतप्त लोगों के संताप को दूर करें। वस्तुतः उनकी मनसा थी कि उद्धव का ज्ञान गर्व चूर हो। बहरहाल यह जो नई दिशा कृष्ण कथा को मिली वह सब प्रयोजन है। आचार्य वाजपेयी ने ठीक कहा है कि सूर ने इस समूचे प्रसंग को एक अनूठे विरह काव्य का रूप दिया है, जिसमें आज से अंत तक ब्रज की दुख कथा कही गई है। इस कथा को भी दो भाग हो जाते हैं, एक तो उद्धव के संदेश ले जाने तक के पूर्व की वियोग कथा, जिसमें विरह की दशा के प्रायः सभी वर्णन विनय और उपालंब आदि हैं, और दूसरा उद्धव तथा गोपियों का वार्तालाप, जिनमें प्रेम की अनन्य तन्मयता सर्वत्र ध्वनित हुई है। यह सब सूर के रचना कौशल का प्रमाण भी है। संयोग के पूर्वार्ध के बाद वियोग का उत्तरार्ध जो अत्यंत विशाल है, कथा को एक रस होने से तो बचाता ही है, मुक्तक होने के बावजूद सूर सागर की वियोग की महागाथा के रूप में हमारे आस्वाद की वस्तु बनता है। वियोग का जो त्रासद संसार सूर ने यहाँ निर्मित किया है, वह त्रासद होते हुए भी कविता के धरातल पर मनोरम बना रहे, इसी नाते सूर ने उसके अंतर्गत उद्धव गोपी संवाद की नियोजना की है। गहरे अवसाद तथा गहरी व्यथा की बुनियाद पर स्थित यह संवाद इस नाते मार्मिक हो उठा है कि इसमें व्यंग्य, चुहल, रीज, हास परिहास के ऐसे छींटे हैं जो अवसाद के गाढ़ेपन को समय समय पर कम करते हैं। कम से कम पाठक की चेतना में उस अवसाद को इतना घनीभूत नहीं होने देते कि वह उसी से आच्छन्न हो जाए। सहृदय और भावुक सूर यहाँ भी हैं। व्यथा के सारे संदर्भ, सारे चित्र और सारी मनोभूम बिना सहृदयता और भावुकता के उस रूप में नहीं उभारी जा सकती थी जिस रूप में वह इस वार्तालाप के क्रम में उभरी है, किंतु यहाँ सूर की विदग्धता तथा वचन चातुरी को भी उसकी पूरी प्रभाव क्षमता के साथ देखा जा सकता है। इस वचन चातुर्य और विलक्षणता का रूप स्वाभाविक बना रहे इस नाते सूर की गोपियों का रूप भी यहाँ विशिष्ट ही रखा गया है, सरल निश्चल किंतु गवई गांव के ठेठपन से युक्त। बातचीत का लहजा, उसके तेवर तथा बोली बानी और मुहावरे, व्यंग्योक्तियों और रीझ खींच ठेठ ब्रज के गवई गांव की नारियों जैसी। सहृदयता, भावुकता, वचन चातुर्य और विधकता से मिलजुल कर सूर के भ्रमर गीत को एक बेजोड़ विरह काव्य की गरिमा प्रदान की है। ज्ञान का गुमान लेकर बड़े आत्मविश्वास के साथ उद्धव ब्रज की धरती पर अपने रथ से उतरते हैं। कोई कृष्ण जैसे रूप स्वरूप वाला रथ पर बैठकर गोकुल आया है, यह खबर हवा की तरह समूचे ब्रज में फैल जाती है। हाय को वैसी ही अनुहार, मधुबन तन तय आवत सखिरी, देखो नयन निहार आज। वैसोई रथ वैसोई को आवत उतही तय, झुरी झुरी सब मरती विरह गोपी जित की तय आज। उद्धव ब्रज आकर गोपियों को श्री कृष्ण के कुशल समाचार बताते हैं, उन्हें कृष्ण की चिट्ठी देते हैं। सूर ने इस बिंदु पर गोपियों की बेचैनी और पत्र देखने मात्र से उत्पन्न हुई उनके मन की अवसाद में श्री उत्सुकता आह्लाद आदि का बड़ा ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। देखियत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावही लय छाती। आचार्य शुक्ल ने इन पंक्तियों में सूर की भाषा और रचना कौशल को सराहा है। आंसुओं के कारण भीग कर स्याही फैलने से सारी चिट्ठी काली हो गई है, इससे कृष्ण संबंध की भावना के कारण प्रबल प्रेमोद्रेक सूचित हुआ है। आगे देखिए तो इस प्रेमोद्रेक की तीव्रता व्यंजित करने के लिए अंक और श्याम शब्दों में श्लेष कैसा काम कर रहा है। पत्री पाकर वैसा ही प्रेम उमड़ा जैसा कृष्ण को पाकर उमड़ता, कृष्ण की पत्री ही उनके लिए कृष्ण हो गई। जैसे वे कृष्ण के अंक गोद अर्थात शरीर को पाकर आलिंगन करती, वैसे ही कृष्ण के लिखे अंक अक्षर देखकर वे पत्री को बार बार हृदय से लगाती हैं। यहाँ भावाधिपत सूर ने भाव का और आधिक्य व्यंजित करने के लिए शब्द साम्य की सहायता ऐसे कौशल से ली है कि एक बार शब्दों का साधारण अर्थ अक्षर और काला लेने से जिस भाव की अधिकता सूचित हुई है, फिर आगे उनका श्रेष्ठ अर्थ गोद और श्रीकृष्ण लेने से उसी भाव की अधिकता व्यंजित हुई है। इसमें जो लाघव हुआ है, मजबून में जो चुस्ती आई है, वह तो है ही, साथ ही प्रेम के अंतर्भूत एक मानसिक दशा के चित्र का कैसा रंग चटकीला हो गया। शब्द साम्य को उपयोग में लाने वाला सच्चा कवि कौशल यही है। सूरदास, पृष्ठ संख्या 268। यहाँ सूर ने सादृश्य या साधर्म्य के कारण नहीं, संबंध भावना के कारण कृष्ण के हाथ की लिखी चिट्ठी के कारण पत्री और राधा तथा गोपियों के बीच की आत्मीयता निरूपित की है। जहाँ चमत्कारी कवि शब्द साम्य पर बल देकर कला की बाजीगरी दिखाते हैं, वहाँ सूर जैसे रसिद्ध प्रभाव साम्य की ओर प्रवृत्त होते हैं। गोपियाँ चिट्ठी पाकर आतुर उत्साहित तो होती है, आकुल व्याकुल भी होती है, किन्तु शीघ्र ही स्थिर भी हो जाती हैं। चिट्ठी आई तो किंतु वे चिट्ठी लेकर करें क्या, उसे पढ़ने वाला कौन है, वे तो अपढ़ मूर्ख कुंवार हैं, उन्हें तो साक्षात श्री कृष्ण ही चाहिए थे। उद्धव कहाँ करें लय पाती, ज्यों लो मदन गोपालन देखें विरह जरावत छाती। इसी के उपरांत शिकवे शिकायतों का दौर शुरू होता है। बीच में कहीं से कोई भ्रमर वहाँ आ जाता है और फिर गोपियाँ उसी उद्धव का नाम लेकर सीधे और उसी भ्रमर का संबोधन करते हुए उद्धव के समक्ष अपना हृदय मन खोलने लगती हैं। बीच बीच में उद्धव उन्हें समझाते भी हैं, किंतु भड़ास, बेचैनी और व्याकुलता तो गोपियों में थी, अतएव उद्धव को बोलने का बहुत कम अवसर देते हुए अधिकतर वही बोलती हैं। गोपी उद्धव संवाद का यह सारा प्रसंग अत्यंत मार्मिक और अत्यंत व्यंजक है और सूर की वचन चातुरी तथा विदग्धता से भरा हुआ है। ध्यान देने की बात है कि इस विदग्धता या चातुरी को कहीं भी महत चमत्कार के धरातल पर नहीं जाने दिया गया, यह कोरी वीट नहीं है। इसके मूल में प्रेम की एक गहरी अंतरधारा प्रवाहित है, अवसाद और विषाद की गहरी लकीरें हैं, व्यथा और बेचैनी की आकुल तड़प है, तभी यह वीट या यह विदग्धता मन को भीतर तक छूती है। गोपियाँ कभी उद्धव को फटकारती हैं, चिढ़ाती हैं, कभी उन पर या कृष्ण पर अपनी खीज या झल्लाहट प्रकट करती हैं, कभी उनकी मखौल उड़ाती हैं, कभी अपने आप पर हंसती हैं, कभी कोयल पपीहे आदि को कोसती हैं, कभी रोने और आंसू बहाने लगती हैं और कभी एकदम शांत हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं, उद्धव से क्षमा मांगती हैं, उनके समक्ष दीन और हतभागी बन जाती हैं। अनुभवों की बड़ी सशक्त योजना इस पूरे प्रसंग में है। संचारी भावों की योजना भी उतनी ही चुस्त दुरुस्त है और वचन वक्रता विदग्धता तथा रचना चातुरी का कमाल यहाँ दर्शनीय है। भाषा के तेवर और लहजे ग्रामीण अंचल विशेषकर ब्रज अंचल के मुहावरे और कथन भंगिमाएं सब यहाँ सुर की लेखनी में जीवित हो उठी हैं। भोली भाली सरल निष्कपट ग्रामीणाओं की सहजता तथा भावों की अतुल गांभीर्य के भीतर से छलकती उफनती हास परिहास व्यंग्य विनोद रीज खेज गिले सिकों तथा चुटकियों और फक्तियों की यह उपस्थित सुर सागर की निधि है। अवसाद तथा व्यथा की अधिकता में हंस सकने और हास परिहास कर सकने का जो माहौल यहाँ सुर ने निर्मित किया है वह उनकी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का भी प्रमाण है। संदेशों से मधुबन के कुएं भर गए हैं, संदेशा लेने वाले गए तो लौटते नहीं, पता नहीं श्याम ने उन्हें सिखा समझा कर वहीं रोक लिया या वे बीच ही में मर खप गए। संदेशन मधुबन कूप भरे, ढेरों पद हैं, एक के बाद एक वचन चातुरी और विदग्धता से भरे हुए। लगता है उद्धव तुम जा कहीं और रहे थे, भूल कर यहाँ आ गए। अच्छा यह बताओ कि कृष्ण ने जब तुम्हें यहाँ भेजा था तो मुस्कराये तो नहीं थे? सूर श्याम जब यहाँ पठाए तब ने कहूं मुस्काने? तुम कैसे व्यापारी हो जो यहाँ ज्ञान की गठरी लेकर ज्ञान बेचने आए हो? और कहीं जाकर यह धंधा करो, आयो घोष बड़ो व्यापारी या जोग ठगौरी ब्रज न बिके हैं आदि आदि। यहाँ तुम्हारे माल को खरीदने वाला कोई नहीं है, कौन मूर्ख है जो मूली के पत्तों के लिए मुक्ता हल देगा, दाख को छोड़कर निबौरी खाएगा? मूरी के पातन के बदले को मुक्ता हल दई है, दाख छोड़कर कटुक निबौरी को अपने मुख खई है। योग की तुम्हारी चर्चा वैसी ही है जैसी कड़वी ककड़ी, तुम व्यर्थ ही यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हो। हम नारियों को योग की शिक्षा देते तुम्हें शर्म नहीं आती? कहाँ भस्म बभूत, कहाँ हम नारियाँ, तुम्हारा निर्गुण किस देश का वासी है? तुम सब काले लोग हो, धूर्त और ठग, तुम हमें बहकाने फुसलाने आए हो। तात्पर्य यह कि अपने मन की एक एक परत को गोपियाँ उद्धव के समक्ष खोल कर रख देती हैं और उद्धव जान जाते हैं कि प्रेम का कितना गहन पयोनिधि, व्यथा का कितना हहराता हुआ सागर गोपियों के अंतर्मन में पछाड़े खा रहा है। गोपियों की उक्तियां कभी कभी इतनी मार्मिक हो उठी हैं कि उद्धव उन्हें ढाढ़स देते हैं, समझाते हैं, किंतु गोपियों का आवेग कम नहीं होता, वे उसी आवेग में झल्ला उठती हैं। कही बे जी न कछु सक राखो, लांबी मेली दई है तुमको, बकत रहो दिन आखो। कभी इस बात को लेकर संतोष करती हैं कि चलो इतनी भाग्यशालिनी वे हैं कि उन्होंने उन उद्धव को देखा जो कृष्ण को देखकर और उनसे मिलकर आए हैं। उद्धव हम आज वही बड़ भागी, जिन अखियां तुम श्याम बिलो के ते अखियां हम लागी। ग्रामीण गोपिकाओं के तर्क भी अपने ढंग से बड़े दिलचस्प हैं कि उद्धव उन्हें काट नहीं पाते। उद्धव से गोपिकाएं कहती हैं, कृष्ण की जिस मूर्ति की तुम हमारे हृदय से निकाल कर ब्रह्म या निर्गुण की प्रतिष्ठा करना चाहते हो, वह मूर्ति निकले भी तो कैसे? कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा हृदय में बसी है, सीधी साधी मूर्ति होती तो सरलता से बाहर आ जाती, किंतु वह तो हृदय में तिरछी होकर अड़ी है, कैसे निकले? इह उर माखन चोर गड़े, अब कैसे निकसत सुनि उद्धव, तिरछे हुए जो अड़े। अरे क्या तुम नहीं जानते कि हमारे कोई 10-20 मन तो है नहीं? एक मन था सो वह कृष्ण को समर्पित है, अब तुम्हारे ब्रह्म की आराधना किस मन से करें? उद्धव मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराध है इस। गोपियां कभी ठिठोली करते हुए राधा से कहती हैं कि कृष्ण के जिस रूप को तुम अचय बैठी हो वह बाहर से निकालो, कृष्ण ने अपना रूप मांगा है। मोहन मांगे हो अपने रूप, इह ब्रज बसत अचय तुम बैठी, ताबिन उहां निरूप। सब कुछ कह सुन लेने के उपरांत गोपियां शांत हो जाती हैं। उद्धव से कहती हैं कि हमने तुम्हारी बात किसी बात का बुरा नहीं माना, तुम बस हमारी पीड़ा को हमारे श्याम तक पहुंचा दो, उनके सिवा हमारा कौन है, वे तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी हैं, हम उन्हें कैसे छोड़ सकती हैं या भुला सकती हैं। तुम्हें जो कहना हो कह लो, हम सब कुछ सुन और सह लेंगी, हमारी छाती तो अब कुलिश के समान कठोर हो गई है। समूचा भ्रमर गीत, समूचा उद्धव गोपी, समा सूरदास की लेखनी से उपजे भाव गर्भित प्रगल्भ काव्य का चरम उदाहरण है। व्यथा का प्रेम और प्रेमजन्य व्यथा का ऐसा सागर सुर ही रच सकते थे और उसमें उतने गहरे सुर ही उतर सकते थे। सुर की रचना सामर्थ्य का जीवित प्रमाण है भ्रमर गीत का उनका विरह काव्य। इस विरह के भीतर नारी हृदय की अथाह गहराइयां हैं, बारीक मनोदशाएं हैं। सुर ने इन मनोदशाओं के बारीक से बारीक सूत्र उसके भीतर खोले हैं। सहृदयता और भावुकता के साथ चतुरता और वाग्विदग्धता का ऐसा संगम हिंदी कविता क्या भारतीय काव्य में विरल है। सुर इसी के चलते श्रृंगार रस के विप्रलम्ब श्रृंगार के अपराजेय सृष्टा है। अब इस भ्रमर गीत प्रसंग के भीतर से ध्वनित होने वाले कुछ ऐसे प्रसंगों को हम सामने लाना चाहेंगे जिन्हें लेकर हिंदी आलोचना में कुछ विवाद उठा है और कुछ चलताऊ टिप्पणियां की गई हैं। कुछ मुद्दे ऐसे भी सामने लाए गए हैं जो वस्तुतः मुद्दे ही नहीं हैं। अपने पिछले निबंध में इस विषय पर अपने कहे हुए को दोहराते हुए हम कुछ ऐसी चर्चा करना चाहेंगे ताकि इन बातों के संबंध में हमारी समझ साफ हो सके। सूरदास पर लिखे गए अपने पिछले निबंध में हमने निर्गुण सगुण विवाद को भ्रमर गीत के प्रसंग में उठाते हुए कहा है कि सूरदास के यहाँ वस्तुतः ऐसा कोई विवाद है ही नहीं। सच पूछा जाए तो सगुण भक्ति कविता में यह विवाद नहीं है, कारण तुलसी भी इसे बार बार दोहराते हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछ भेद आया, अगुण सगुण दुई ब्रह्म। भक्तों के यहाँ वे सूर हो या तुलसी, कहीं भी निर्गुण ब्रह्म को अस्वीकार नहीं का अस्वीकार नहीं है। स्वतः तुलसी रामचरितमानस या अपने दूसरे ग्रंथों में जब तब राम के ब्रह्म स्वरूप की झलक दे दिया करते हैं और सूर के यहाँ वे कृष्ण सदा ही नंद यशोदा के पुत्र और गोप गोप काम के सखा नहीं है। बीच बीच में उनके शरीर रूप की झांकी सूर भी देते हैं। मिट्टी खाने के प्रसंग में, मूसल के प्रसंग में या मथानी से बांध दिए जाने के प्रसंग में ढेरों प्रसंग इस प्रकार के हैं। यह जरूर है कि भक्तों की भक्ति के आलम्बन सगुण साकार ही हैं, कारण उनके आकार निर्गुण की भक्ति सबके बूते की बात नहीं है, साधारण जन के लिए दुष्कर है। अतएव ईश्वर के अवतारी रूप की कल्पना हुई, उसे रूप और गुणों से बांधा गया, इस भक्ति के कायदे तय हुए। सूरदास का एक पद है जिसमें उन्होंने अविगत की गति को न समझने वाली गूंगे का गुड़ कहा है और कहा है कि निर्गुण की भक्ति को सब प्रकार से अगम मानकर ही वे सगुण भक्ति की ओर प्रवृत्त हुए। अविगत गत कछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। रूप रेप कुंजाज गुद भी निरालम मन चक्रित धावे, सब विद अगम विचार ताते सूर सगुण लीला पद गावे। कबीर की चर्चा के क्रम में भी हम बता चुके हैं कि उनके निर्गुण राम निर्गुण ब्रह्म से भिन्न है। प्रसंगतः उन्होंने अपने निर्गुण राम में कच्चपय गुणों का आरोप भी किया है, अतएव भक्ति काव्य में विशेषता सगुण भक्ति में निर्गुण सगुण विवाद कहीं नहीं है। सभी को निर्गुण की सत्ता मान्य है, भक्ति का आलम्बन जरूर सगुण साकार है, तब क्यों भ्रमर गीत में इस विवाद को व्यर्थ में ढूंढा जाए और उसकी आवश्यक चर्चा की जाए। भ्रमर गीत में गोपियां निर्गुण की सत्ता को अमान्य करती हैं, वे उसे अपने काम का नहीं मानती। वे उसे अपना काम नहीं मानती। मजाक मजाक में उद्धव से निर्गुण के बारे में नाना प्रकार के प्रश्न करती हैं और उन्हें चिढ़ाती हैं कि तुम्हारा निर्गुण किस देश का रहने वाला है, उसका रूप क्या है आदि आदि। गोपियों की समस्या निर्गुण न होकर उद्धव द्वारा दिया जाने वाला योग और ज्ञान का निरर्थ उपदेश है। गोपियों की कृष्ण पर भक्ति है, वे कृष्ण से प्रेम करती हैं। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देते हैं, उनसे योग का आचरण करने को कहते हैं। अपने भक्ति और अपने प्रेम के बूते पर ही गोपियां उद्धव के ब्रह्म ज्ञान तथा योग विद्या का मजाक उड़ाती हैं। उनके लिए भक्ति से बढ़कर प्रेम से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। योग की तुलना में भक्ति को महत्व देने की गोपियों की यह बात सूर का तो प्रतिपाद्य है ही, देखा जाए तो यह कबीर का भी प्रतिपाद्य है। वे मूलतः भक्त हैं, अहेतुक भक्ति करने वाले, प्रपत्र पर विश्वास करने वाले। योग की चर्चा वहाँ है, किंतु भक्ति की बात आते ही कबीर योग को उससे हल्का बताते हैं। योग से उनका लगाव भक्ति के मूल्य पर नहीं है। इसी प्रकार उन्हें ज्ञान मार्गी भले कहा जाए, वे मूलतः प्रेम के उपासक हैं। इस बात को भी हम रेखांकित कर चुके हैं कि सारे संतों और भक्तों ने प्रेम को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ कहा है। कबीर स्वयं सारे पुथी ज्ञान और चरित्र ज्ञान को प्रेम के ढाई अक्षरों से में तोल देते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जब योग से ऊपर भक्ति का और ज्ञान से के ऊपर प्रेम का यह वर्चस्व समूचे भक्ति काव्य में है, तो उसे इस बिंदु पर महत्वपूर्ण मानने के बजाय गलत मुद्दों में उलझाना सही नहीं है। अपने प्रेम की अनन्यता तथा निष्ठा के बूते पर ही सूर की ग्रामीण गोपिकाएं ब्रह्म ज्ञानी उद्धव की बोलती बंद कर देती हैं और उद्धव के ज्ञान का सारा गर्व ब्रज की प्रेममयी धरती पर गिरकर चूर चूर हो जाता है। गए थे गोपियों को ब्रह्म ज्ञान तथा योग विद्या का उपदेश देने और लौटते हैं गोपियों की भक्ति तथा प्रेम भावना में सराबोर होकर। यह योग पर भक्ति की और ज्ञान पर प्रेम की विजय नहीं तो और क्या है। व्यर्थ में भ्रमर गीत को सगुण के मंडन तथा निर्गुण के खंडन जैसे मिथ्या मुद्दे से क्यों जोड़ा जाए। भक्ति और प्रेम की सशक्त बुनियाद पर खड़ा सुर का काव्य और उनका भ्रमर गीत इसी नाते इतना लोकप्रिय और ग्राह्य है। अब सवाल शेष रहता है कि शुक्ल जी की इस मान्यता पर विचार करने का कि सुर की रचना कारूप तुलसी की अपेक्षा इस नाते अधिक सांप्रदायिक है कि सुर तुलसी की तुलना में एक भक्ति संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय से सीधे जुड़े हैं और उनकी सांप्रदायिक मान्यताओं को अभ्यक्त देते हैं। हमने पीछे कहा है कि सुर में पुष्टिमार्ग की छाप न हो या न हो वे उसकी दार्शनिक आधारित विचारधारा से प्रतिबद्ध हो या न हो निश्चय ही प्रतिबद्ध होंगे। कारण पुष्टिमार्ग में वे बाकायदा दीक्षित हुए थे और अष्टछाप के कवियों में भी वे सिरमौर हैं। सुर की सर्जना के जो अंश उनकी इतनी प्रसिद्धि के कारण है मुख्यतः भागवत के दशम स्कंद की कथा जहाँ उन्होंने कही है और जिसका संबंध लीला गायन कृष्ण के बचपन तथा उसके बाद की लीलाओं से है, जिसके अंतर्गत ही वात्सल्य और श्रृंगार के उनके पद आते हैं। उनके प्रस्तुत सुर सागर में सुर अपनी संपूर्ण सांप्रदायिक धार्मिक या कविता धार्मिक आध्यात्मिक व्याख्याओं में रस लेने वाले उन्हें महत्व देने वाले विद्वान और अध्येता उनमें पुष्ट मार्गदर्शन अध्यात्म और पुष्ट मार्गी लीला भूम ढूंढे पाए और अस्मग्न हो। जिनका पुष्ट मार्ग से दर्शन भक्ति अध्यात्म आज से कोई लेना देना नहीं है, जो महज मानवीय धरातल पर लौकिक धरातल पर संवेदना के धरातल पर कविता का आनंद लेना चाहते हैं, मनुष्य के भाव जगत में गहरे बैठना चाहते हैं, अपने संपूर्ण इंद्रिय बोध से इतने अनंत रूपात्मक संसार से परिचित होना चाहते हैं, मुग्ध और क्षुब्ध होना चाहते हैं, उनके लिए भी सुर की कविता उतनी ग्राह्य और उतनी ही महत्वपूर्ण है। चीरहरण, दान लीला, रास लीला, माखन चोरी, किस लीला और की आध्यात्मिक व्याख्या नहीं हुई है और नहीं की गई है, किन्तु सुर की कविता महज इन व्याख्याओं तक सीमित नहीं है, उनका अतिक्रमण करते हैं। मनोविज्ञान की जमीन पर बाल मनोविज्ञान की बारीकियों में जाते हुए कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं तथा नंद यशोदा के वात्सल्य को नितान्त मानवीय लौकिक भूमिका पर भी आस्वाद्य बनाती है। सुर की सृजनात्मक कल्पना वात्सल्य के इन अंशों में परंपरागत ही सही उपमाओं उत्प्रेक्षाओं और रूपक का भव्य समारोह प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार का संयोग तथा विप्लम्ब की चर्चा हम कर चुके हैं। उसके साथ जुड़े लीला प्रसंग महारास सबको महत सांप्रदायिक कहकर सीमित नहीं किया जा सकता। शुक्ल जी ने इस श्रृंगार को स्वतः जीवन महोत्सव की संज्ञा दी है, उसे सुर के सुछंद कल्पना व मनोभूम का प्रतीक कहा है, मानव जीवन के गहरे भावात्मक संदर्भों से जुड़ा है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं वह हमारे लिए नितांत लौकिक भूमि पर भी आस्वाद्य है, विचार में, कला में, वास्तविक रूपांतरण में। जो रचनाकार एक मनोभूमि से हटकर विनय और दूसरी मनोभूमि पर रचना करने के लिए नियोजित किया जाता है, लीला गायन जिस संप्रदाय विशेष की छाप लगती है, श्रीनाथ मंदिर में कीर्तनिया के रूप में नियुक्त होता है और जिसका काम होता है आठोयाम में श्री कृष्ण के प्रातः काल जागने से लेकर संध्या के उपरांत पुनः सो जाने तक भजन और गीत गाए, ऐसा नियोजित निर्देशित रचनाकार अपने गुरु और उनकी शिक्षा से प्रतिबद्ध, ऐसा निष्ठावान भक्त और अनुयायी गुरु और उसके मार्ग की गुरु की शिक्षा की अवहेलना करे, उपेक्षा करे, यह तो समझ में नहीं आता। सुर ने इस सब की उपेक्षा नहीं की, यह सुर के रचनाकार की उनके सांप्रदायिक भक्त और निष्ठावान स्वर में अभिव्यक्ति देने वाला, उसके मुखर करने वाला स्वर है। कौन है जो बालकृष्ण की नटखटी पर उनकी क्रीड़ाओं पर उनकी भांति भांति लीलाओं पर नहीं रिझ सकेगा। कृष्ण के इस उलाहने पर कि माया मोह दाऊ बहुत खिझायो, मोसो कहत मोल को लीन हो तू जसमत कब जायो, कौन है जो मुग्ध नहीं होगा। सांप्रदायिक निष्ठा वाले भक्त अपने तई रिझे कृष्ण के इस बालहट पर कि माया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, हमें भी रिझने से कौन रोक सकता है। यह सब और जिनके लिए हो तो हो, यह व्यापक मनुष्यता के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, साधारण हृदय के लिए भी है। इसमें अध्यात्म हो दर्शन हो, किंतु इसमें बड़ी सहज माध्यमिक मार्मिक वेदक कविता भी है जो मानव मात्र की संपत्ति है। सुर मानव मात्र के हृदयों को झकझोरते और आंदोलित करते हैं, इसलिए वे पुष्ट मार्ग सगुण भक्त होते हुए भी बड़े रचनाकार हैं, कालजयी रचनाकार हैं। अष्टछाप में जहाँ अन्य निष्ठावान भक्त और सामान्य रचनाकार बनकर ही उभरे, सुर अष्टछाप के जहाज कहलाए, कालदर्शी कालजयी रचनाकार बने। जरूरत सूरदास तथा संतों और भक्तों की रचना को इस संदर्भ में पहचानने और उजागर करने की है। शुक्ल जी ने अपने पूर्वाग्रहों के चलते वात्सल्य और श्रृंगार में सुर को बेजोड़ कहते हुए भी सुर द्वारा अंकित प्रेम और वियोग की को तुलसी का वियोग वर्णन की तुलना में छोटा साबित किया है, उसे बाल क्रीड़ा कहा है। गोपियों के विरह को उन्होंने लोक बाह्य माना है, उसमें किसी महत्वपूर्ण लोक संग्रह का भाव उन्होंने नहीं पाया। चार कोस पर विराजे कृष्ण के लिए विरह का इतना बड़ा मजमून क्यों, यह उनकी शंका है। शुक्ल जी ने सुर की कविता की सहृदयता से समीक्षा की है, उसके नाते सुर बड़े कवि हैं, किंतु जहां उनके पूर्वाग्रह प्रबल हुए हैं उसकी समीक्षा दृष्टि मुक्त न रहकर बद्ध हो गई है। शुक्ल जी ने कविता क्या है निबंध में हृदय की मुक्तावस्था और बद्धावस्था की चर्चा की है। शुक्ल जी अपनी समीक्षा के इसी प्रकार मुक्त और बद्ध हुए हैं। जहाँ मुक्त हैं हमारे सबसे समर्थ समीक्षक के रूप में उभरे हैं, जहाँ पूर्वाग्रहों से बद्ध हैं अपनी सीमा निर्देशित करते हैं। उनकी बद्ध मनोस्थिति की इस प्रकार की बातें अलग उनके लेख में लिखे भी सुर हमारी मानवीय विरासत हैं।